मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। बाबा के मुरली रागन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा के मुरली रागन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाए, प्यार बरसाए, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार
ओम शांति। कई हजारों वर्ष पहले जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर हुए, उनके विषय में ढेर सारी घटनाएं जातक कथाएं है। एक कहानी है जिसमें कुछ लोग बुद्ध से मिलने आते, द्वार पर आनंद उनका परम शिष्य बैठा हुआ है, वो कुटिया है, कुटिया के द्वार पर आनंद है, और वो कुछ लोग, कुछ भिक्षुक मिलने आते हैं। वो अंदर जाते हैं बुद्ध से मिलने, पर बहुत समय हो जाता है, वो लोग बाहर ही नहीं आते। आनंद को बेचैनी होती है, अंदर हो क्या रहा है, फिर भी वो रुकता है, पर एक समय आता है कि फिर उससे रुका नहीं जाता और वो भीतर जाता है, और भीतर जब जाता है तो देखता है केवल बुद्ध बैठे हुए हैं, वो लोग कहाँ चले गए, और कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है। वो बुद्ध से पूछता है, वो लोग कहाँ चले गए, बुद्ध कहते हैं दे आर मेडिटेटिंग, वो ध्यान कर रहे हैं। बस कहानी यही पूरी हो गई। लोग मिलने आए। आनंद द्वार पर बैठा है, वो लोग भीतर गए। बहुत समय तक जब कोई नहीं आया भीतर से बाहर, उत्सुकतावश आनंद भीतर गया, देखा तो अंदर केवल बुद्ध बैठे। वो पूछता है, वो लोग कहाँ गए? बुद्ध कहते हैं, दे आर मेडिटेटिंग, वो ध्यान कर रहे हैं। ये बस इतनी ही कहानी है। आनंद अभी तक उस अवस्था तक पहुंचा नहीं है। और कहानियों में बाद में दिखाया है, आनंद केवल बुद्ध की सेवा ही करता रहा है, पर उसने वो अरिहंत की अवस्था को प्राप्त नहीं किया। वो तो बुद्ध के शरीर छोड़ने के बहुत समय बाद, बाकियों ने तो प्राप्त कर ली या उसने दूसरों को प्राप्त कराई, पर आनंद खुद एनलाइटेंड नहीं हो पाया था। बुद्ध कहते हैं, दे आर मेडिटेटिंग, अर्थात वो ध्यान कर रहे हैं। और क्योंकि आनंद अभी मेडिटेशन की उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वो उनको नहीं देख पा रहा है जो मेडिटेट कर रहे हैं। वो अभी भी इस देहभान की अवस्था में है। जो खुद मेडिटेट नहीं कर रहा है, वो उन्हें भी नहीं देख सकता जो मेडिटेट कर रहे हैं। जो खुद उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं किए, वो उनको भी नहीं देख सकते जो उनके इर्द गिर्द ही है, साधारण दिखने वाले, परंतु जिनकी चेतना ऊंचाइयों को छू चुकी है। वो उन्हें भी अपने ही समान साधारण ही समझते हैं। यहां तक कि आगे और दिखाया, बुद्ध ने शरीर छोड़ा और उसके कुछ वर्ष, कुछ समय बाद, 4 मास बाद ही सबने ये सोचा, एक कमिटी बनी 400-500 भिक्षुकों की, और उन्होंने ये सोचा कि बुद्ध ने जो कुछ कहा है वो सारा संकलन करना है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है और एक ही व्यक्ति है सुपर मेमोरी मास्टर आनंद, जिसको सब याद रहता था और सबसे ज्यादा 40 साल बुद्ध के सानिध्य में था। बुद्ध ने कहा, कब, क्या कहा, उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी, वो सब कुछ उसको याद था। परंतु ये जो कमिटी बनी थी, द फर्स्ट कमिटी, उसमें केवल वही आ सकता है जो हाईएस्ट स्टेज अरिहंत, जैसे ज्ञान में हम कर्मातीत, फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण, समान, समीप, इन शब्दों का प्रयोग है, वैसे ही बौद्ध साहित्य में शब्द प्रयोग है अरिहंत। पर आनंद अरिहंत अवस्था को पाया ही नहीं है, फिर इसको कैसे ले इसमें? तो आनंद से कहा गया, तुम एक काम करो, पहले थोड़ी और साधना करो, अरिहंत अवस्था तक पाओ और फिर आओ। आनंद ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने कितनों को संपूर्ण बना दिया है, कितनों को ध्यान सिखाकर परम अवस्था तक पहुंचा दिया, मेरे लिए तो कुछ भी संभव असंभव नहीं है। वो गया एकांत वन में साधना करने लगा, परंतु करता ही रहा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि साथ में अहंकार जुड़ा था। अरिहंत वो अवस्था है जहां अहंकार गिर जाता है। वो इस अहंकार से कर रहा था कि मुझे करना है, मैं पाके रहूंगा, इस अवस्था को मैं पाके रहूंगा, पर हुआ ही नहीं। महीने गुजर गए और फिर एक दिन वो थक हार गया और उसने ये कह दिया, मेरे से नहीं होता। बस जिस समय उसने ये कहा, आई क्विट, आई गिव अप, बस उसी क्षण उसे वो परम अवस्था प्राप्त हो गई। तो ये जो सर्वोच्च अवस्था है, किसी धर्म ने उसे अरिहंत की अवस्था कहा है, किसी धर्म ने उसे प्योर एज द फादर, कंप्लीट कहा है, किसी धर्म ने जिसे निर्वाण कहा है, किसी ने मोक्ष कहा है, किसी ने मुक्त कहा है, किसी ने जीवन मुक्त कहा है, किसी ने तीर्थंकर कहा है, किसी ने निर्ग्रंथ कहा है। हाईएस्ट स्टेज को अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी ने भाव समाधि कहा है, किसी ने निर्विकल्प समाधि कहा है, निर्जरा, किसी ने कहा है वो अवस्था निर्जरा की है, ज्योति का बुझ जाना अर्थात निर्वाण, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने जैन फिलॉसफी है, उसमें अलग 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 नाम है, बीएटीट्यूड। गीता ने जिसे स्थित प्रज्ञ कहा, मुरलियों में जिसके लिए गायन है फरिश्ता स्वरूप, कर्मातीत स्थिति, व्यर्थ से मुक्त स्थिति, संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति, समान स्थिति, भाव समान स्थिति, निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति, ये सब हाईएस्ट स्टेट के गायन है। इस हाईएस्ट स्टेट में कॉन्शियसनेस वन हो जाता है। एक दूसरा भी गायन है, बुद्ध के लिए अहंकारी राजा था और उसे पता चला कि सारे के सारे लोग बौद्ध बन रहे हैं और उसकी बहुत महिमा है, और वो उस समय आया हुआ है अपने 10,000 भिक्षुओं के साथ, 10,000 मंक्स, और उसके सभासदों ने मंत्रियों ने कहा आप भी एक बार मिल लो। उसने पहले मना किया, परंतु फिर बहुत समझे, उसकी प्रार्थना करने के बाद वो राजा मान गया और कहा कि जा दो मैं आता हूं। और जैसे ही वो पहुंचा उसने पूछा कितने लोग हैं, सिपाहियों सैनिकों और सेनापतियों ने कहा 10,000 लोग हैं। तुरंत उसने तलवार निकाली, जरूर कोई षड्यंत्र होगा, क्योंकि 10,000 लोग एक साथ यदि यहां है और आवाज बिल्कुल नहीं, कुछ तो षड्यंत्र की गंध आ रही है। वो मंत्री समझाते हैं षड्यंत्र कुछ नहीं है, तलवार भीतर रखो, आप बस मिलो। वो जाते हैं, वो राजा जाता है, देखता है बुद्ध बैठे और 10,000 भिक्षु बैठे, सब मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो बुद्ध से मिलता है, कहता है ये कैसे हो रहा है, केवल 10 लोग भी यदि कहीं खड़े हो जाए तो कितना आवाज आता है, और तुम लोग इतने सारे 10,000। बुद्ध कहता है ये 10,000 है ही नहीं, एक ही है, इट इज बट वन कॉन्शियसनेस। जब मन मन से मिल जाते हैं, माइंड माइंड से मिल जाता है, वन यूनिवर्सल माइंड, यदि बुद्ध और महावीर एक ही कमरे में 3 दिन रुके, दोनों की फिलॉसफी अलग है, दोनों में भयंकर मतभेद है, चुपचाप रहेंगे 3 दिन, बाकी उनके जो शिष्य वो लड़ते रहेंगे, वो देखते रहेंगे दोनों के बीच में क्या होता है, पर हाईएस्ट स्टेजेस में कोई झगड़ा नहीं, हाईएस्ट स्टेजेस में एकत्व है, एक क्या है। मोहम्मद पैगंबर आ जाए और जीजस क्राइस्ट आ जाए, कबीर आ जाए, और ये सब सबको एक ही कमरे में ठहरा दो, क्या करेंगे, दादी जान की प्रकाशमणि दादी सबको बिठा दो एक साथ, क्या करेंगे, नहीं नहीं हमारा राइट है, नहीं नहीं तुम्हारा गलत है, तुम्हारा ये मार्ग है, तुम्हारा वो मार्ग है, ऐसा करेंगे ना। हाईएस्ट स्टेज में एकता है। एक और एक कितने होते हैं गणित में, 2। एक और एक संगठन में कितने होते हैं, 11। एक और एक प्यार में कितने होते हैं, 1। एक और एक अध्यात्म में कितने होते हैं, 0। एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए, कूटनीति। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, राजनीति। ऐसे 6 सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत, एक एक के सिद्धांत, एक एक से मिल जाए गणित में दो बनते हैं, एक एक से मिल जाए संगठन में 11 हो जाते हैं, एक एक से मिल जाए प्रेम में एक ही है दोनों, पर अध्यात्म में शून्य बनता है। कूटनीति में एक एक से मिलने ही ना दिया जाए, और राजनीति में एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। ये एक का पहाड़। तो अध्यात्म में और प्रेम में एक हो जाता है या फिर शून्य हो जाता है। द वन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो हाईएस्ट स्टेट का गायन, हाईएस्ट स्टेज का गायन, हाईएस्ट सर्वोच्च अवस्था का गायन सभी धर्मों में अलग अलग नाम से, केंशो, जैन फिलॉसफी में केंशो कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र, योग कर्म सूत्र, योग की परिभाषा है। जहां सारी इंद्रिया वश में हो गई है, जितेंद्रिय अवस्था कर्मा, कर्मेंद्रिय जीत अवस्था, या भगवद गीता में योग कर्मसु कौशलम, ये अवस्था सारी इंद्रियों का निरोध। कोई भी नाम दो, कर्मेंद्रिय जीत, जितेंद्रिय, जीवन मुक्त, स्थित प्रज्ञ, कर्मातीत, फरिश्ता, बाप समान, निर्वाण, निर्ग्रंथ, तीर्थंकर, बुद्ध। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं, स्थिति का नाम है। इट्स अ स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। बुद्ध ने खुद कहा है, मेरे पहले पता नहीं कितने बुद्ध हुए हैं, मेरे बाद कितने बुद्ध होंगे। किसी एक गौतम की वो मोनोपोली नहीं है, कई हुए कई होंगे। यह हाईएस्ट स्टेज है। यह भक्ति में फिर प्रभु प्रेम में डूबने की अवस्था, भाव मग्न अवस्था, भाव समाधि की अवस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स्टेसी। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ थे और कॉलेज में जाते थे, उनके इंग्लिश के जो प्रोफेसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम पर लेक्चर ले रहे थे, पोएम जिसमें एक शब्द आया एक्स्टेसी। नरेंद्रनाथ ने पूछा, व्हाट इज एक्स्टेसी, एक्स्टेसी है क्या? वो पोएम में था, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इंग्लिश नेचर का पोएट है। वो पूछते व्हाट इज एक्स्टेसी, तब वो इंग्लिश के प्रोफेसर जो थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे कॉलेज में, वो कहते हैं कि एक्स्टेसी एक भावमग्न अवस्था है, एंड इफ यू वांट टू नो यू मस्ट गो टू वन पर्सन इन दक्षिणेश्वर, रामकृष्ण, यू मीट हिम, वो तुमको बता सकता है ये एक्स्टेसी क्या होती है। तो एक्स्टेसी वो अवस्था है भक्ति की, भावमग्न अवस्था, जिसमें सब कुछ खो चुकी है चेतना, जो मीरा की अवस्था है, चैतन्य महाप्रभु की अवस्था, हे कृष्ण, या भक्तों की अवस्था, उसे कहते हैं एक्स्टेसी। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। इस अवस्था को एक नाम है ट्रांसपोर्ट की अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसडेंटल स्टेट, ट्रांसडेंटलिज्म, हायर रेल्म्स, The otherworldly realms, extraterrestrial realms, ये सारी highest states का गायन है अलग अलग जगह पर। तो आज की दो मुरलियां हम लेंगे, और दोनों मुरलियों में बाबा ने highest अवस्था का गायन बताया है। 1 तारीख और 5 तारीख सितंबर मास, क्या अवस्था है ये, कैसी अवस्था है। इस अवस्था को पाने से पहले ये क्या है ये जानना भी जरूरी है। परंतु कई बार उसे पाने के बाद ये सब समझ में आता है। तो इतने जो सारे नाम हैं और इतने सारे जो धर्म हैं और जो अलग अलग नाम हमने देखे, वो सब इस एक अवस्था में है। तो इसमें ऐसी 10 बातें हैं। समीपता की निशानी है समानता, आवाज में आना और आवाज से परे चले जाना, ये पहली निशानी। समानता की निशानी, संपूर्णता की निशानी, कितनी बातें बताई है इसमें बाबा ने, 10। साउंड, साउंडलेस, दूसरा साकारी और निराकारी, साकार स्वरूप में कर्मयोगी और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी अवस्था में स्थित होना। साकार निराकार, पहला बताया आवाज और आवाज से परे, ऐसा नहीं कि आवाज से परे जाने के बाद आवाज में आए ही ना, आवाज में भी आना है, पर आने के बाद फिर तुरंत आउट। तीसरा, सुनना और स्वरूप हो जाना, सुनना और स्वरूप हो जाना। उस दिन भी सुनाया था, प्रज्ञा 3 प्रकार की है, एक श्रुत प्रज्ञा, दूसरा चिंतनमयी प्रज्ञा और तीसरा भावनामयी प्रज्ञा। श्रुत अर्थात सुना है, वो भी आवश्यक है, बिना सुने कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे। दूसरा चिंतनमयी, उसका चिंतन किया है, जब तक चिंतन नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। परंतु तीसरा है भावना, वो है अनुभव, प्रैक्टिकल। शास्त्रों में 3 बातें हैं, श्रवण मनन निनिध्यासन, श्रवण मनन निनिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, पहले सुनना ये है क्या, फिर उस पर मनन करना। जो भी बातें सुनी है अगर उस पर चिंतन नहीं किया तो सुना अनसुना हो जाएगा। तीसरा निदिध्यासन अर्थात उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, उसको करना। एक है मुरली पढ़ना, एक है मुरली सुनना, क्लास सुनना, पर यहां तक किया तो कुछ नहीं होगा जब तक खुद खुद कुछ करेंगे नहीं। कुछ लिखो, चिंतन करो, मनन करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, कुछ तो करना है खुद से, तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो श्रवण मनन निदिध्यासन, श्रुत प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, धारणामय प्रज्ञा, ये 3। होटल में गए, मेनू देखा, ऑर्डर किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, दूसरे क्या खा रहे देख रहे, दो जो खा रहे और सोच रहे, अच्छा इनके पास ये है, इनके पास ये खा रहे, ये खा रहे, खुशी तो हो रही है पर पेट भरेगा क्या मेनू देखने से। सेकंड दूसरों को देखना, फिर तीसरा खुद का खाना आया और फिर खाया, ये 3 अवस्थाएं। पहले केवल देखना है, सुनना, दूसरा केवल चिंतन कर रहे, हाँ मेरा जो आएगा ना वो ऐसा होगा, पर तब तक पेट नहीं भरेगा। तीसरा जब तक होता नहीं निदिध्यासन या धारणा में भावना में प्रज्ञा, तब तक पेट नहीं भरेगा। तो मुरली में कहा है तीसरा पॉइंट, सुनना और स्वरूप होना, सुनते सुनते ही स्वरूप हो जाना। चौथा, मनन करना और मगन हो जाना। जैसे भक्ति में कहा हमने, एक अवस्था केंशो या इक्स्टसी की अवस्था है, इक्स्टसी, इसको रैप्चर भी कहा जाता है, रैप्चर, रैप्चर अवस्था, इक्स्टसी की अवस्था, ट्रांसडेंटल अवस्था, ट्रांसपोर्ट की अवस्था, ये भक्ति की अवस्थाएं हैं। जैसे हमने ज्ञान की अवस्थाएं देखी, सभी सब निर्विकल्प समाधि, निर्ग्रंथ अवस्था, अरिहंत अवस्था, अरिहंत में डुबकी लगाना, बीएटीट्यूड क्रिश्चियनिटी में, कंप्लीट स्टेज क्रिश्चियनिटी में, तीर्थंकर की वो अवस्था, बुद्ध की वो अवस्था, वहां तक वो पहुंचना, उसी तरह भक्ति में ये अवस्था है। और जिसको बाबा ने क्या प्रयोग किया, शब्द मगन। तपस्या की एक परिभाषा ये भी है, लगन में मगन, तपस्या अर्थात लगन में मगन, तपस्या अर्थात परिवर्तन, तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, तपस्या अर्थात अनुभूति, तपस्या अर्थात जो मुरलियों में आया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तपस्या की परिभाषा है। ये तपस्या है खो जाना एक में। तो यहां क्या कहा, मनन करना, पर मनन में रुकना नहीं, मग्न हो जाना, यह चौथा। पांचवा, रूह रिहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना। कल उस दिन भी हमने देखे थे 21 प्रकार के योग, उसमें एक योग कौन सा था, रूह रिहान, बाबा से केवल बात करना, वो भी एक योग है। पर साथ में क्या हो जाना चाहिए, रूहानियत में स्थित। अगला, सोचना और फिर करना। ये जो गैप है सोचना और करने की, सोचना अर्थात संकल्प और स्वरूप, सोचना अर्थात प्लानिंग और एक्शन प्रैक्टिकल, इसके बीच में गैप है। इस ब्रिज को, इस गैप को ब्रिज करना, सोचना और करना, मुझे ये करना है और फिर तुरंत करना। नेक्स्ट, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे चले जाना, ये पांचों इंद्रियों का आधार लेना और फिर इनसे बाहर निकल जाना। आठवां, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार हो जाना, अभी अभी चीजों को यूज करना और उन चीजों से बाहर निकल जाना, एडिक्शन ना बने। नहीं तो इस मोबाइल जैसा ज्ञान योग का साधन और कोई भी नहीं, इसमें सारी मुरलियां है, सब कुछ है, क्लासेस से लेके सब कुछ, पर यही अगर एडिक्शन बन गया तो इससे ज्यादा घातक, ये बॉम्ब है, बॉम्ब और कुछ भी नहीं है, जो विनाश कर देगा, संपूर्ण विनाश। अगला, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, देख रहे हैं परंतु नहीं देख रहे, अर्थात आंखों में अनासक्त भाव है। और लास्ट, संपर्क में आते हुए कमल पुष्प के समान रहना। ये 10 की 10 बातें हैं कर्मातीत की। कांटेक्ट में आ रहे, लोगों से मिल रहे, और ऐसे नहीं कि लोगों से दूर भाग रहे, हजारों लोगों से मिल रहे परंतु डिटैच्ड। तो कौन कौन सी 10 बातें देखी, पहला, आवाज में आए, आवाज से दूर, मतलब जब बोलना है तब बोला, जब चाहो तब मौन हो जाना, चुप हो जाना। दूसरा, साकारी दुनिया में और फिर निराकारी दुनिया में, साकारी अवस्था निराकारी अवस्था। तीसरा, सुनना, स्वरूप बाद में नहीं, सुनते सुनते ही स्वरूप बन जाना। चौथा, मनन करना और साथ साथ मगन हो जाना। जब माइंड बहुत डिस्टर्ब हो, माइंड को यदि एकाग्र करना हो तो उसका भी साधन मुरली ही है। कल जो टेस्ट दी उसमें लास्ट पैराग्राफ मुरली पर था, मुरली क्या है, लाठी है, वो तुमको पहुंचा देगी। और क्या है मुरली, भोजन, मुरली कल की जो वाणी पर, जिस पर आप लोगों ने टेस्ट दी लास्ट पैराग्राफ, हाफ कास्ट फुल कास्ट ब्राह्मण, मुरलीधर से प्यार अर्थात मुरली से प्यार था ना, संगठन नहीं, लास्ट पैराग्राफ मुरली वाला, लगन से सुनना है मुरली को। तो अगला, सुनना और स्वरूप बनना, मनन करना और मगन हो जाना, रूहानियत करना और रूहानियत में स्थित हो जाना। अगला सोचना और करना, वो जो गैप है ना, बस उसको कम से कम रखना है। सोचा और तुरंत किया। नेक्स्ट, कर्मेंद्रियों को आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे चले जाना। फिर साधनों का आधार लेना और साधनों से निराधार हो जाना। और देखना, देखते हुए देखना परंतु नहीं देखना, सुनते हुए सुनना परंतु नहीं सुनना। तो ये 10 निशानी है किसकी? कर्मातीत अवस्था की। और बाबा ने इसी मुरली में कहा, यह 4 प्रकार की हलचल होगी, वायुमंडल की, व्यक्तियों की, संबंधों की और साधनों का अभाव। वायुमंडल की हलचल होगी, व्यक्तियों की हलचल होगी, संबंधों की हलचल होगी और साधनों का अभाव होगा। वास्तव में लास्ट अवस्था वही है कि जो हलचल में हम कैसे हैं, अचल। बस इसी का अभ्यास करना, इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 10 पॉइंट्स है, इन पर काम करना है आज। साधनों का आधार लिया, साधनों से परे। कर्मेंद्रियों का आधार लिया, कर्मेंद्रियों से परे। साकार शरीर में फिर निराकार। रूहानियत कर रहे और फिर रूहानियत में स्थित। डिटैच्ड। राजा की कन्या होती है, वो एक सन्यासी को देखती है और वो एकदम मोहित हो जाती है और राजा को कहती है, मुझे ये चाहिए। ये युवा सन्यासी, उस युवा सन्यासी को पकड़ कर लाते हैं राज्य में, राजा के सामने। राजा कहता है, मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, इससे विवाह करो। वो सन्यासी कहता है, कौन विवाह करेगा, मैं हूं ही नहीं। कहते, क्या तुम हो ही नहीं? कहते, हाँ मैं हूं ही नहीं, विवाह कौन किससे करेगा? राजा कहता है, विवाह करोगे कि नहीं जल्दी बताओ, सीधा सीधा बताओ, उल्टा उल्टा मत घुमाओ। वो कहते, कौन विवाह करेगा, मैं हूं ही नहीं। राजा को गुस्सा आता है, कहता है, इसकी गर्दन उड़ा दो। वो कहते, उड़ा दो गर्दन, वैसे भी इस गर्दन से मेरा कोई संबंध ही नहीं। गर्दन से तो क्या, मेरा इस शरीर से ही संबंध नहीं है। कब से मैंने इस शरीर से संबंध छोड़ दिया है? और वो सन्यासी राजा से कहता है, जैसे वसंत का मौसम चालू था, जैसे वसंत में जो सूखी पत्तियां होती है वो हवा को आमंत्रित करती है कि आओ और मुझे गिराओ, वैसे मैं भी आमंत्रित करता हूं कि आओ और मेरा सिर काट दो, क्योंकि मेरा इस सर से कोई संबंध ही नहीं है। राजा एकदम बाहर देखता है, वास्तव में वसंत का मौसम चालू है और वास्तव में देखता है पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। उसके मन में आता है, ये व्यक्ति मृत्यु का को निमंत्रण दे रहा है और इतना निर्भय है, तो इसको मैं क्या मारूंगा, इसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। जो मृत्यु से डरता नहीं और आह्वान कर रहा है मृत्यु का, और अपने शरीर से इतना अलग हो चुका है, इतना डिटैच हो चुका है। राजा कहता है, तुम जाओ, छोड़ देता है उसको। इतनी डिटैचमेंट, किससे? शरीर से। शरीर में आना, शरीर से परे जाना। कर्मेंद्रियों में आना, कर्मेंद्रियों से परे जाना। कर्मेंद्रिया जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनके संपर्क में आना और उनसे डिटैच्ड। मैं हूं ही नहीं ये शरीर। तो ये 10 बातें प्लस ये 4 प्रकार की हलचल दूसरी मुरली है, जिसमें बाबा ने फरिश्तों की बातें सुनाई है। फरिश्ते की बातें 8 ये बातें हैं फरिश्तों की। जो फरिश्ता होता है वो क्या करता है? बहुत सारे अच्छा 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 वो मुरली वाला, ओके ओके, अच्छा आ जाएगा, ओके। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा। ये थी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट थी तो लगन से मुरली पढ़ना और सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी है मुरली। जितना मुरली से स्नेह उतना ही सबको मुरलीधर से भी स्नेह। यह दूसरी पॉइंट। तीसरी, सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो जो दूसरी मुरली है 5-9 की, इसमें बाबा ने पूरे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। बाबा ने कहा जो एक्टर्स होते हैं ना, उनको लाइट फोकस किया जाता है, तो इनका एक वो स्वरूप जो लाइट में है और एक वो जो लाइट में नहीं है, बहुत फर्क है। एक मेकअप वाला और एक बिना मेकअप वाला, पहचानने भी नहीं आएंगे बिना मेकअप के। तो बाबा ने कहा है कि तुम भी इस बेहद के ड्रामा के हीरो हीरोइन हो, एक्टर्स हो। अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते। तो फरिश्ते स्वरूप की लाइट से अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगा, ये पॉइंट। फिर बेहद के हीरो एक्टर्स और सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले। और फिर यहां 2-3 बातें बताइए, तुम्हारे मस्तक से क्या, तुम्हारी आंखों से क्या और तुम्हारे मुख से क्या। तो नयनों से, जैसे टीवी होता है, तो बाबा ने कहा फरिश्ते के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नयन द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन होंगे। ऐसा होने वाला है, इन आंखों से लोग देखेंगे तो उनको तीनों लोकों का दर्शन होगा। एक आंखों से, मस्तक से क्या, चमकती हुई मणि की को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान, स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगा। कल हमने प्रश्न पूछा था 7 प्रकार के साक्षात्कार कौन कौन से, और होमवर्क छोड़ा था। ब्राह्मण आत्मा या हर आत्मा चाहती है कि मुझे ये 7 साक्षात्कार हो। सबसे पहला तो हर चाहता है कि मैं आत्मा को देख लूं, दूसरा चाहता है मैं परमात्मा को देख लूं, शिव बाबा, कि मुझे शिव बाबा को देखना है। ज्योति वो खुद भी कहे कि मुझे देखने से कुछ फायदा नहीं है, तो भी कहेगा नहीं मुझे देखना है, एक बार तो दिखा दो। तीसरा, परमधाम को एक बार देखना है। चौथा, सतयुग को एक बार देख लेना है। पांचवा, अपने 84 जन्मों को मुझे देख लेना है, पता चल जाए मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या था, कैसा था, क्या था, कौन से हिसाब थे, कहाँ था। अगला, और सूक्ष्म वतन, अच्छा, और संपूर्ण स्वरूप, वो फरिश्ता वाला स्वरूप है, उसमें ये सब चीजें डाल दो। विनाश, जैसे ब्रह्मा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, हमको भी दिखाओ एक बार, तब वैराग आएगा। हमको इसलिए तो नहीं आ रहा है क्योंकि हमको तुमने अभी तक कराया नहीं है, देखना है इन आंखों से सब कुछ खत्म होते हुए। तो सबसे पहला तो मुझे अपनी आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, परम धाम का साक्षात्कार, सतयुग को एक बार देख लेना है। अगर वो देख लूंगा ना तो तुरंत इधर से वैराग आ जाएगा। फिर मेरे 84 जन्मों को मुझे देखना है, अपने हर एक जन्म को, विनाश को एक बार देखना है। और सातवा, कल कहा था कि 2 छोड़ रहे, तो उस 2 में से एक है विनाश, आज एक छोड़ रहे, कल बताना। सतयुग का हो गया, उसमें आ गया कि मैं चलो सोचो। और तो ये फरिश्ते की बातें थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आज करना है सबको, वो है ये ऐसी एक चेकलिस्ट है जो हम बनाएंगे, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख देना। हर संडे से लेके सैटरडे तक ये चेकलिस्ट है। तो ये 7 दिन की चेकलिस्ट है। तो यहाँ ऊपर डेट लिखना है आपको, 12 तारीख से चालू करना है इसको, 12 से 7 दिन का। और यहाँ लिखा हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये ऊपर ऊपर भी बनाया हुआ है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टोटल 11 पॉइंट्स है। टोटल कितनी पॉइंट्स है? 11। और यहाँ पर लिखेंगे किया कि नहीं किया 11 बातें। कब? अमृत वेला, क्योंकि फरिश्तों का यही काम है। अब वो कौन सी 11 बातें हैं? हमको इन 11 चीजों को सकाश देनी है, और ये अमृत वेला कंपलसरी काम है जो होना चाहिए। अगर हुआ तो टिक मार्क करो किया। कौन से दिन? मंडे को। तो ये चेकलिस्ट है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना। तो एक मास के लिए 4 प्रिंट आउट लगेंगे, 7-7 दिन के। तो पहला पॉइंट है फरिश्ता, अर्थात हमें अपने लिए नहीं अब दूसरों के लिए जीना है। हमें दूसरों को शक्तियां भरनी है। हर मुरली में यही आता है, शक्तियां दो, वरदान दो। इसमें भी कहा है, आह्वान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, आत्माएं तड़प रही है, दुखी है। तो सबसे पहला काम 5 इंद्रियों को सकाश। सकाश कहाँ से चालू करनी है? अपने शरीर से। दादी जानकी कहती थी, मैं उठते ही सबसे पहले क्या करती हूँ? अपने अपने शरीर को 5 मिनट सकाश देती हूँ। क्योंकि शरीर यदि ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। शरीर को चलाना यदि आ गया तो राज्य चलाना आ जाएगा। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले किसको सकाश देंगे? अपने 5 शरीर के 5 इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को सकाश। ये सबसे पहली सकाश। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में पवित्रता की किरणें जा रही है। शरीर स्वस्थ यदि है, स्वस्थ नहीं है, यदि हेल्थ नहीं है संगम युग पर, तो स्पिरिचुअलिटी फेल। क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं भी कितने सारे सुपरस्टिशन में फंसे हुए हैं। कल एक माता आई थी तो उसको इतनी सारी बीमारियां हैं, पर किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर उसने क्या किया? किसी ने कहा वो उसके पास जाओ तंत्र मंत्र के पास। फिर वो तंत्र मंत्र वाले के पास गई, फिर बहुत सारी पूजा पाठ की। कौन सी माता? जो 40 साल से ज्ञान में है। फिर वो सारी विधिया की, फिर वो कहीं और गए तीर्थ स्थान पे, वहां पे सब कुछ किया उन्होंने जो जो बताया। 50,000 रुपये खर्चा किया, 15 दिन तक बीमारी खत्म हो गई, 15 दिन पर फिर आ गई। तो हमने कहा फिर आप वापस नहीं गए उनके पास? तो बोली हाँ गई। उनको पूछा कि 50,000 रुपये खर्च किए, इतना आपने जो भी कहा वो सब किया, तो अभी क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम पर कोई एक आत्मा कुछ कर रही है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली बार जो कर रही थी वो दूसरी आत्मा था, इस बार ये दूसरी आत्मा है। तो फिर मैंने कहा फिर आप कहाँ गए? फिर और दूसरे मंत्री इसके पास गए, इसके इसके पास जा रहे, खर्चा कर रहे हैं बहुत सारा, पर बीमारी ठीक नहीं हो रही है। वजन ज्यादा है, एक्सरसाइज जीरो, वो नहीं करना है। भोजन का कंट्रोल करना नहीं है। एमआरआई कर लिया, यहाँ कुछ कुछ होता है। मैंने कहा एक लास्ट इंडोस्कोपी करा लो, बोले वो भी हो गई है, वो भी नॉर्मल। एमआरआई नॉर्मल, सीटी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, पर बीमारियां बहुत है शरीर में। यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, रात रात भर नींद नहीं आती, यहाँ भारीपन। तो उसने कहा था पिछली बार जो आत्मा ने तुम पर ये कर रहे था अटैक किया था, वो नहीं, अब ये दूसरी आत्मा है। मैंने कहा ये तो अच्छी मार्केटिंग है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो 50,000 रुपये उस आत्मा के थे। तो ये कोई सिंपल, मतलब ये ज्ञानी आत्माओं की बातें चल रही हैं। लंबा समय से जिन्होंने मुरलिया बाबा दादियों से, अव्यक्त बाप दादा से स्टेज पर दृष्टि वगैरह ली है वो सब। इसलिए सबसे पहली सकाश किसको? अपने ही शरीर को सकाश दो। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, निर्मल है, कंचन काया यहीं पर है, हल्कापन है, उसमें कोई भारीपन नहीं, कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं, संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ, अंग अंग में ऊर्जा है, अंग अंग में प्रवाह है, शक्ति है, लचीलापन है, शक्ति है, बहुत अच्छी नींद है, सब कुछ अच्छा है। तो ये सबसे पहली सकाश, पांच तत्वों को सकाश, दूसरी सकाश पहली पांच इंद्रियों को, दूसरा पांच तत्वों को, आकाश में जाओ हवा को सकाश, ऊपर दो नीचे तीन, पहले आकाश फिर हवा, सारी हवा शुद्ध हो रही है, पवित्र हो रही है, आकाश शुद्ध हो रहा है, फिर धरती शुद्ध हो रही है, फिर अग्नि और जल, जल को शुद्ध कर दो, अग्नि को सकाश दे दो, अग्नि सबको शुद्ध करती है, हम अग्नि को शुद्ध करें, धरती को शुद्ध कर दो, हवाओं में पवित्रता की किरणें फैला दो और आकाश में पवित्रता फैला दो। फैलाना क्या क्या है? प्यूरिटी, लाइट, माइट। लाइट अर्थात ज्ञान, माइट अर्थात शक्तियां, शक्तियां फैलाओ, ज्ञान अर्थात लाइट फैलाओ और प्यूरिटी फैलाओ, बस इसके अलावा और कोई सकाश नहीं देनी है। कौन सी सकाश देनी है? शक्तियां, ज्ञान, पवित्रता और ज्यादा से ज्यादा शुभ भावना, शुभ कामना, वो कुछ कुछ आत्माओं के संबंध में, वो तत्वों के संबंध में नहीं। फिर दूसरी सकाश है पांच तत्वों को सकाश, तीसरी सकाश है पांच खंड। यूरोप में जाओ, सभी यूरोप वासियों को सकाश, यूरोप, फिर अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये पांच, एक एक के ऊपर फरिश्ता स्वरूप में चले जाओ, सकाश दे दो, हो गया काम। अगला पांच महासागर, भारत के बाजू में हिंद महासागर, अफ्रीका और भारत के बीच, फिर अफ्रीका और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर, फिर अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे बड़ा पीछे वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन, नीचे सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर, पांच महासागर को सकाश, फिर उसके बाद में पांच सत्ताओं को सकाश, राजसत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, एक मुरली पूरी इस पर चली हुई है, उसमें चौथी सत्ता बताई है कर्म की सत्ता, ये एक अलग मुरली है जिसमें बाबा ने कहा राजसत्ता अर्थात तुम एक सेकंड में राज्य अधिकारी बन जाओ खुद के, यह है राजसत्ता। धर्म सत्ता अर्थात जो धारण करो, प्यूरिटी को तुमने धारण किया, यह है तुम्हारी धर्म सत्ता। विज्ञान सत्ता अर्थात एक सेकंड में शरीर से परे, जैसे वो लोग विज्ञान वाले लाइट का प्रयोग करते, और फिर एक कर्म की सत्ता। तो कर्म और धर्म एक ही बताया उस मुरली में, तो एक मुरली में ये चार था, पर यहां हम दूसरी लेंगे। पहली तीन तो सेम है, राजसत्ता अर्थात सारे पॉलिटिशियंस को सकाश, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित लोग हैं वो सारे। दूसरे धर्म सत्ता में कौन कौन आएगा? मठ, आश्रम, साधु संत, योगी, सन्यासी, भक्त, सब सब बहुत बड़ा है, धर्म सत्ता तो बहुत बड़ी है। धर्म सत्ता बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, ये है साधारण सभा, न्यारा सा परिवार, छोटा सा परिवार। और अभी अभी राम मंदिर का ये जो हुआ था वो धर्म सत्ता थी, पर उसमें आमंत्रित लोग जो थे वो कोई साधारण लोग नहीं थे उसमें बॉलीवुड के हाईएस्ट, पॉलिटिक्स के हाईएस्ट, हर चीज के जो हाईएस्ट है वो सब लोग थे उधर। तो ये वैसी हमारी सभा नहीं है। बाबा जी सभा से मिलते क्या कहते? भोली भाली माता है, ये छोटा सा परिवार है, न्यारा सा परिवार है, यहाँ टांगे नहीं चलती फिर भी माता है आ गई, बूढ़ी माता है, 90 वर्ष की माता है, बीमारी के साथ आ गई। ये जो संसार की जो धर्म वाली सभा है ना वो अलग ही है। तो धर्म सत्ता को सकाश, फिर विज्ञान सत्ता, इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब आएगा, जो भी साइंस से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे। फिर है प्रकृति की सत्ता, उसमें पशु पक्षी, भालू, चीता, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, झरने, झील। और फिर है लौकिक ज्ञान की सत्ता, इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करो, ये एक मुरली में आया है। उस मुरली में बाबा ने पांच सत्ताएं गिनाई है, उसमें ये सत्ता गिनाई है, एक है लौकिक ज्ञान की सत्ता, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अगला तो ये हो गए पांच सत्ताएं, फिर है पांच प्रकार की संसार की आत्माओं को सकाश। ये सारा काम 5 मिनट में कर देना है, सुबह सुबह पहले पहले टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे बहुत फास्ट, बहुत क्विक। और इसकी चेकलिस्ट है ये, जिस दिन नहीं किया उस दिन उसको क्रॉस करो, जिस दिन किया अमृत वेला, जैसे जो तारीख है ऊपर तारीख लिखी, और जो भूल गया उसको क्रॉस करो शाम को कि ये भूल गया था, फिर रात को सोने से पहले सकाश देके फिर सोना। पांच प्रकार की आत्माएं, दुखी दुखी आत्माओं को सुख की सकाश, अशांत आत्माओं को शांति की सकाश, अपवित्र आत्माओं को पवित्रता की सकाश, चौथे प्रकार की आत्माएं भटकती हुई आत्माएं, भटक रही है ठिकाना ढूंढ रही है उनको ठिकाना, और पांचवी प्यासी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं। ये पांच प्रकार की आत्माओं को सकाश। तो ये हो गया, कहां पहुंचे हम, पांच प्रकार की संसार, फिर पांच प्रकार के ब्राह्मण, एक कुमार, उसमें मधुबन निवासी सारे आ गए ऊपर नीचे सारे, एक कुमार या सेंटर वाले कुमार या जो संसार में जो भी कुमार है, सभी कुमारों को सकाश, जो ज्ञान में चलते हैं, अनन्य है, पक्के है। दूसरा कुमारिया, जो पक्की है कुमारिया, उनको सकाश। तीसरा जो टीचर्स है, चौथा जो माताएं हैं अधर कुमारी, और जो भाई है अधर कुमार, जो ज्ञान में चल रहे हैं। ये पांच प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को सकाश। उसके बाद में पांच प्रकार की स्पेशल आत्माएं हैं। अब ये कौन सा है, ये एक एडिशन है, पांच प्रकार की स्पेशल आत्माएं। सबसे पहले जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है, मेंटल टॉर्चर किया है, इमोशनल टॉर्चर किया है, किया है, कर रहे हैं जिन्होंने हमको बहुत निंदा की, बहुत अपमान किया, उन सबको, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया उन सबको क्षमा, ये पहली आत्मा है। दूसरा, हमने जिनको सताया है, दुख दिया है, पीड़ित किया है, निंदा की है, अपमान किया है, बहुत ही टॉर्चर किया है, ऐसी आत्माओं से माफी मांगना, तो एक माफ करना है, एक माफी मांगना। तीसरा धन्यवाद, किन आत्माओं का धन्यवाद, लौकिक माता पिता का सबसे पहले, फिर वो सभी आत्माओं का जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए मदद की है, उन सब के प्रति थैंकफुलनेस। चौथे प्रकार की आत्मा, उस आत्मा से जिससे सबसे ज्यादा कर्म बंधन है, ये स्पेशल सोल्स में है, सबसे ज्यादा कर्म बंधन है, पता नहीं किस जन्म का हिसाब है, बहुत सब कुछ करने के बाद, हजारों मीटिंग्स हो गई है, सब कुछ हो गया, पर उस एक आत्मा के साथ ऐसा कड़ा बंधन है ना वो टस से मस होने को तैयार है ना हम, दोनों सुपर ईगो वाले तो वो आत्मा को सकाश। और लास्ट पांचवे प्रकार की स्पेशल आत्मा है, जो भविष्य में अभी आई नहीं है जिनसे अभी कोई है कुमार, अभी सोच रहा है शादी करूं तो अभी उसके संबंध चालू हो गए, वो आत्माएं जो अभी आई नहीं है, जो आएंगी अभी आ जाएगी। हम ये मत समझना सारे हिसाब पूरे हो गए। हाँ, हम एक जगह कुमारों की भट्टी चालू होने वाली थी, बहुत सारे कुमार आए थे, 100 कुमार थे लगभग, उसमें से एक कुमार मिलने आया, बहन जी ने कहा इससे मिल लो, तो मैंने कहा बोलो, बोले मेरी शादी होने वाली है अगले महीने, भट्टी अटेंड करूं या ना करूं, मैंने कहा खतरा है बहुत खतरा है क्योंकि दरवाजे बंद हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी इसलिए खतरा तो बहुत है, देख लो तुम, वो नहीं आया तो ये पांच प्रकार की आत्मा है। कौन कौन सी, जिनको हमने दुख दिया उनसे माफी मांगो, जिनको हमें दुख दिया उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, माफी मांग लो, धन्यवाद दे दो। किनको धन्यवाद देंगे, सबको, वो सब ने जिन्हें हमें आगे बढ़ाया, मदद की हमारी, थोड़ी सी भी मदद की ज्ञान में, उनके प्रति धन्यवाद का भाव। अगला एक स्पेशल आत्मा है जो पीछे ही पड़ी हुई है कब से, जो स्पेशल उसके साथ हिसाब है, या एक या अनेक भी हो सकती है। अगला जो आने वाली है भविष्य में, तो ये हो गया स्पेशल साइड। फिर उसके बाद में है पांच प्लेसेस, मधुबन की पांच, तो इसमें और बहुत सारे डिविजन है, ऊपर माउंट अबू के पांच, नीचे शांतिवन के पांच। माउंट अबू के पांच में पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, म्यूजियम, हॉस्पिटल, ये ऊपर के पांच। नीचे के पांच शांतिवन, मनमोहिनी, आनंद सरोवर, मानसरोवर, फिर सोलार आनंद सरोवर, और उसके बाद में फिर बहुत सारे छोटे 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 जो है वो हॉस्पिटल ले लो, शिवमणि ले लो, नर्सिंग ले लो, आनंद अपना ये आनंद नहीं आरोग्य भव, आरोग्यवन, तपोवन, पीएम पार्क, ये सब गुलजार भवन, ये कहाँ है? उपवन कहाँ बन रहा है? अच्छा गुलजार भवन उपवन तो ये सब, तो ये सारी प्लेसेस। उसके बाद में पांच विकार, इनको क्या करना है? भस्म करना है अमृत वेला। ये चेकलिस्ट है रोज की, बहुत बड़ी चेकलिस्ट है, पर एक बार कर लिया तो काम हो जाएगा। और कुछ दिन तो सामने रख के करो, इसका छोटा सा कार्ड बना लो, जेब में डाल दो उसको। हाँ फोटो तो है पर छोटा सा, इतना सा, ताकि वो हो जाए पूरा। फिर पांच प्रकार के पांच विकार जिनको हमें भस्म करना है। फिर बाबा के पांच स्थान मधुबन के बाहर के कौन कौन से? सबसे पहला सेंटर, सबसे पहला सेंटर, ऊपर से जाना फरिश्ता रूप में, और जितने सेंटर्स है सब सेंटर्स के ऊपर, क्योंकि हर एक जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न चल रहा है सूक्ष्म में। अगर नहीं भी है तो भी ऊपर जाके प्यूरिटी की सकाश, कौन सी सकाश देंगे? प्यूरिटी की किरणें, शक्तियों की किरणें, ज्ञान की किरणें, या शुभ भावना शुभकामना। तो एक सेंटर, दूसरा रिट्रीट सेंटर, बड़ा रिट्रीट सेंटर्स जो है वो। तीसरा गीता पाठशाला है। चौथा जमीन, जमीन मतलब जमीन में क्या क्या? तो जमीन में एक तो वो जमीन जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या जो बाबा की जमीन है, यहां जो गार्डन लिया हुआ है, वो सारे गार्डन्स है ना बहुत सारे जो ब्रह्मा कुमारीज को दे दिए हैं लोगों ने, तो वो गार्डन, या फिर जमीन ऑलरेडी बाबा की जमीन है, या फिर जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या लेने वाले हैं, या अभी तक मिली नहीं है वो भी। और चौथे प्रकार का स्थान है वो स्थान, पांचवे प्रकार का वो स्थान जहां पर बहने सेवा करने जाती है, वो सेंटर नहीं है। जैसे वहां मुरली क्लास के लिए जाते हैं या कोई प्रोग्राम रखते हैं, वो लग्न मंडप पर वहां भट्टी आयोजित की है, अब क्या करें, जमीन नहीं है, तो वो स्थान। तो ये टोटल कितने हो गए? 11। तो पहले पांच तत्वों को सकार दे देना फटाफट, पहले शरीर से चालू करना। अभी क्रम कैसे रखेंगे? शरीर से चालू कर दिया, शरीर को सकाज दे दिया, फिर ऊपर उठे पांच तत्वों को सकाज दे दिया, फिर पांच खंड को सकाज दे दिया, पांच महासागर को सकाज दे दिया, पांच प्रकार की आत्माओं को सकाज दे दिया संसार की, फिर पांच प्रकार के ब्राह्मणों को सकाज दे दिया, फिर उसके बाद में पांच बाबा के स्थान मधुबन वाले, फिर पांच बाहर के स्थान, फिर पांच विकारों को देख लेना, एक एक राक्षस को, जैसे दिखाया ना सीरियल्स में, देवी है उसका ऐसे करती है, उधर से गोला निकलता है और राक्षस सामने, वो भाग रहा है पीछे गोला आग का, फिर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, फिर वो गोला उससे टकराता है, वो भस्म में भस्म हो जाता है। तो ये पांच विकार जो है उनको इस रूप में देखना है, वो कौन है? राक्षस। और हमने क्या कर दिया, यहां से कहीं से भी निकालो, अब आंख से निकालो, मस्तक से निकालो, और वो उस राक्षस को भस्म करना है। तो पांच विकारों को भस्म करना, फिर पांच प्रकार की विशेष आत्माएं, जिनको दुख दिया उनसे माफी मांगो, जिन्होंने हमको दुख दिया उनको माफ करना, और माफ के पीछे एक शब्द जोड़ देना, अनकंडीशनल माफी, शर्त वाली नहीं बिना शर्त के, तुमने जो कुछ किया, जैसा भी किया, जितना भी अन्याय किया, मैं तुमको अनन्य हृदय से हार्दिक माफी हार्दिक माफ करता हूं, दिल से, तहे दिल से, ताकि इधर कुछ ना बचे, कोई काला दाग ना बचे, टोटल पार्डन, फॉरगिवनेस। उसके बाद में उन आत्माओं को धन्यवाद करना जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, और फिर वो एक जो विशेष आत्मा है उसका क्या करोगे, जिससे सबसे ज्यादा हिसाब किताब है, उसको शुभ भावना शुभकामना की सकाश, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, उसको ज्ञान कहां सुनाओगे, उसे बस शुभ भावना देते जाओ। माफी में भी रखो, पर ये खास आत्मा है एक, माफी में तो वो वहां, ये सारे थोड़ा ओवरलैप है, इसमें ओवरलैप है, पर ये खास आत्मा है जिसके लिए माफी वगैरह सब कुछ करके हो गया है, इतने सालों से कई समय से सकाश दे रहे पर होता कुछ नहीं, पता नहीं कहां चली जाती है सकाश। वो दिखाया ना रामायण महाभारत में, इधर से तीर जाते इधर से दोनों के लौट जाते, सकाश तो हम दे रहे पर जाती कहां है पता नहीं, सकाश डोज कम पड़ रहा है, डोज बढ़ाना है, और कम बार दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। फिर ये हो गया, और लास्ट जो अभी तक उन आत्माओं से हमारा अभी आई नहीं है, बढ़ाने वाली है, भविष्य के गर्भ में है, जो बहुत भयंकर हिसाब किताब ले चुकतू करने आने वाली है, और उनके इनको अभी से सकाज दे देना, जैसे डिजास्टर होने से पहले ही प्रिपरेशन होती है ना, प्रिपेरेडनेस, वैसे ये आत्माएं हिसाब किताब लेने आने वाली है। अभी गर्भ में ही है, गर्भवती है मां, कौन आने वाला है पता नहीं उसको सकाश। तो ये हो गया सकाश। तो आज का होमवर्क नंबर पहला, वो जो कर्मातीत की 10 बातें बताई, फरिश्ते की 8 बातें बताई, और ये चेकलिस्ट। तो पहला होमवर्क तो ये है कि ये चेकलिस्ट बनानी है, तो इसका प्रिंटआउट आप निकाल लेना। ये छोटा सा है, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसका एक बड़ा एक छोटा दो बना दो, ताकि भूले ना कि ये काम रोज करने हमको। दूसरा, हाँ, 12 तारीख से चालू करना उसको, अभी से चालू कर सकते पर बना के तैयारी करके रखो। दूसरी, ये जो बीच की मुरली है 2-9, तो हमने कुछ दिन पहले होमवर्क दिया था मुरली में, टॉपिक्स निकालने हैं, फिर उसके दूसरे दिन क्या बताया था, सामान निकालने हैं, उसके पहले एक बार बताया था एमसीक्यू निकालने हैं 10। आज इस मुरली से 5 वरदान तैयार करने हैं भवो वाला, और उसमें पूरा आना चाहिए सारा सारा वाक्य, और प्रॉपर वाक्य आना चाहिए, मतलब इतना बड़े पैराग्राफ का एक वरदान बनेगा उसमें, ये करने वाले, वो करने वाले, ऐसे करने वाले राज्य अधिकारी वगैरह वगैरह भव। अंदर का नहीं लिखना है, केवल ऊपर का, पर अच्छा बनाना है एक प्रॉपर। केवल कितने? 5, ओनली 5 वरदान। और इसमें जो दिया होगा ऐसे में, वो वाला नहीं लेना है, उसमें का याद प्यार वाला अपना बनाना है।
कौन सी है?
2-9। हाँ, तो ये मुरली है जैसे ये, कल्प कल्प के राज, तख्त नशीन वगैरह वगैरह, इसमें शब्द है दिल तख्त नशीन भव, पर उसमें 3-4 पूरा मतलब कवर हो जाना चाहिए। तो यह है आज का काम। अच्छा, ओम शांति।
मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। बाबा के मुरली रागन गाए, अव्याक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा के मुरली रागन गाए, अव्याक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाए, प्यार बरसाए, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसा।